ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुसुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजतं सगणरघुनाथानीतं तं सजीवम् साद्वैतं सवदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनसहगण ललिता श्रीविशाखानिताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चनि गौराङ्गी राधेवृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आप सभी को प्रातः भागवत कक्षा में आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं कृष्ण बलरंग मंदिर का तरफ से। आज बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है जो कि जगन्नाथपुरी में, जो कि आज का तिथि का नाम है हेरा पंचमी। क्या नाम है? ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आज का दिन जगन्नाथपुरी में शाम का समय पे लक्ष्मी जाती है, किस प्रकार जगन्नाथ का प्रघोषा होता है। पहले से हमें चर्चा करेंगे स्नान पूर्णिमा से लेके आज तक, क्योंकि आप पर रथ यात्रा का दिन में थोड़ा बहुत कुछ सुने हैं। बाहुड़ा यात्रा आने वाले है जो कि जगन्नाथ का वापस यात्रा, उसी दिन भी क्लास नहीं हो पाता है क्योंकि उसी दिन भी एक महाराज का व्यास पूजा होता है। रथ यात्रा का दिन भी एक महाराज का उत्सव व्यास पूजा हुआ था, तब ये दो दिन भी आप लोग को उसी तिथि में वहाँ का बारे में सुन नहीं पाते हैं। तब सारा चीज एक ही साथ में कोट करूँगा, लेकिन टाइम का प्रावन देख के, क्योंकि ये जो हेरा पंचमी है, हेरा पंचमी के बारे में सिर्फ चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, जो कि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में लगभग आप इसको पढ़ेंगे कि सिर्फ पाठ करेंगे तो आपको दो तीन दिन लग जाएगा, सिर्फ पढ़ेगा कोई, और इसका ऊपर चर्चा करेंगे तो कम से कम दो तीन दिन का सेमिनार होना चाहिए हेरा पंचमी का ऊपर में। तब स्नान पूर्णिमा का दिन भगवान जगन्नाथ स्नान करते स्नान मंडप पर, स्नान वेदी कहा जाता है। जगन्नाथपुरी में पूरी मंदिर के अंदर पांच मंडप है, एक है रत्न मंडप, एक है नाट मंडप, एक है भोग मंडप, एक है मुक्ति मंडप और एक है स्नान मंडप। स्नान मंडप पे जगन्नाथ एक दिन के लिए आते हैं, सिर्फ एक दिन। और स्नान मंडप में भगवान जगन्नाथ जब स्नान करने के लिए आते हैं और 108 गगरा जल में स्नान किया जाता है, और ये स्नान करने के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि सारा विश्व का लोग को दिखाना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि भगवान जगन्नाथ नरलीला करते हैं, मानवीय लीला करने के लिए सारा जगत को दिखाने के लिए भगवान स्वयं रत्न मंडप में विराजमान, स्नान मंडप में विराजमान होकर सारा देशवासी लोग को देख ले मैं कैसा स्नान करता हूँ। क्योंकि जगन्नाथ 365 दिन रत्न मंडप में रहते हैं, तब कोई भी व्यक्ति जगन्नाथ का स्नान को दर्शन नहीं कर सकता है, और जगन्नाथ का अर्चा विग्रह को स्नान किया जाता है। जगन्नाथ का अर्चा विग्रह का नाम है राधा मदन मोहन, उनको स्नान किया जाता है 365 दिन। और जगन्नाथ को स्नान कराने के लिए जगन्नाथ का सामने एक ही मिरर रखा जाता है। क्या रखा जाता है? मिरर। और ये प्रतिबिंब में भगवान जगन्नाथ को स्नान करने के लिए प्रतिबिंब, ये
ऐसा ऐसा नहीं है, इसको ऐसा घुमा कर रखने का मैं इसको
आवाज़ सही आ रहा है, सभी लोग को सुनाई दे रहा है पीछे तक आवाज़? जय जगन्नाथ बोल के तब जगन्नाथ प्रतिबिंब में स्नान करते हैं रत्न मंडप पर, और वो स्नान यात्रा का दिन जगन्नाथ रत्न सिंहासन से उतर के सुबह सुबह लगभग 6 से 7 बजे का बीच में, सुबह 6 से 7 बजे का बीच में जगन्नाथ को रत्न मंडप से स्नान मंडप पहंडी करके, इसको कहते हैं पांडु विजय। जगन्नाथ चलते फिरते, हम लोग जैसा चलते फिरते ऐसा नहीं, जगन्नाथ जंप करते हैं एक ही जगह से दूसरा जगह जंप करते हैं, हाँ। और स्नान मंडप पर आने के लिए बहुत सारा पंडे लोग उनको स्नान मंडप पे ला के विराजमाना कराते हैं। कराने के बाद जगन्नाथ मंदिर के अंदर 3 कुआं है, एक ही कुआं है जो कि रोशोशाला का अंदर, उसी कुआं का नाम है गंगा। उसी कुआं का जल से जगन्नाथ के लिए पकवान बनता है, और वो जल इतने स्वादिष्ट है नारियल पानी भी फेल मर जाएगा। वहाँ से जगन्नाथ मंदिर से समुद्र सिर्फ 1 किलोमीटर, ज़्यादा होगा तो 1.5 किलोमीटर हो जाए, और वो जो रोशोशाला का अंदर जो कुआं है इतने गहरा है फिर भी पानी खारा नहीं है, पानी खारा नहीं है, और उसी पानी से भगवान के लिए पकवान बनता है। ये गंगा का कुआं है, उसका नाम है गंगा। और एक कुआं है जो कि बिमला मंदिर का सामने है, उसका नाम है जमुना। उसी कुआं का जल से जगन्नाथ का जो अर्चा विग्रह है राधा मदन मोहन, इनको स्नान कराने के लिए वो जल प्रत्येक दिन। लेकिन जो स्वर्ण कूप है जिसका नाम है सरस्वती कुआं है, वो है उत्तर दरवाजा का साइड में। उत्तर दरवाजा के अंदर आप एंट्री करेंगे राइट साइड में वो कुआं है, 365 दिन वो कुआं बंद रहता है, वो कुआं कभी भी खुला नहीं होता है, और उसी कुआं से 108 गगरा जल को निकालते हैं किसी दिन स्नान पूर्णिमा का दिन। और वो कुआं में कभी भी कीचड़ नहीं होता है, कोई कीड़ा नहीं होता है, 365 दिन बंद पड़ा रहता है। और ये कुआं का सुरक्षा के लिए एक देवी वहाँ पे प्रस्तुत है, उसका नाम है शीतला देवी, उसको कुआं को सुरक्षा देता है। जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ मंदिर पे सभी को सेवा दिया गया, जगन्नाथ सभी देवता को सेवा दे दिया, हनुमान जी को भी सेवा दे दिया, हनुमान जी को भी सेवा दिया। पश्चिम दरवाजा का साइड में जाएंगे एक हनुमान जी है, कान को लगा कर खड़े है दीवार पे, उसका नाम है कर्णपता हनुमान, कान को लगा कर खड़े है। और एक हनुमान है जहाँ पे चक्र तीर्थ रोड में जाओगे तब वहाँ पे और एक हनुमान को सेवा दिया गया, समुद्र का पानी वहाँ से आगे नहीं आएगा, और वहाँ पे हनुमान जी को बांध के रखा गया है, इसलिए उसका नाम है बेढ़ी हनुमान। इसको लोहे का झंझीर में बांध के रखा गया है। तब ये जो स्वर्णकूप है, स्वर्णकूप को सुरक्षा देता है शीतला देवी, और वो कुआं से 108 गगरा स्नान पूर्णिमा का दिन जल को निकाल के जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा का सामने रखा जाएगा, मंत्र किया जाएगा, मंत्र पाठ से सारा तीर्थ को आह्वान किया जाएगा। आह्वान करने का बाद भगवान जगन्नाथ को स्नान किया जाएगा, और जगन्नाथ के लिए 35 गगरा जल 35, बलदेव के लिए 33 गगरा जल, सुभद्रा के लिए 22 गगरा जल, और सुदर्शन के लिए 18 गगरा जल, इसको मिलाइए 108 होगा, 35 33 22 और 18। इसमें जगन्नाथ स्नान करने का बाद क्या होता है, भगवान को बुखार चढ़ जाता है, क्या होता है बुखार चढ़ता है, भगवान मानवीय लीला करना चाहते हैं, और जगन्नाथ तो स्वयं ये भक्त के लिए ही, भगवान स्वयं भक्त का बुकार को लिया। एक ही भक्त था माधव दास करके, उनको वो बुकार हुआ था और वही बुकार को जगन्नाथ लिए। मैं इसका ऊपर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये सारा टॉपिक चेंज हो जाएगा, फिर सभी चीज ये बता नहीं सकते हैं। तो भगवान को जब बुकार हुआ तो भगवान एक ही अणसर पिंडी है, जो कि आप लोग को समझेंगे तो क्या है, एक ही मंडप बना होता है, एक ही घर टाइप का, और उसी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन रहते हैं और उसी में किसी को भी दर्शन नहीं होता है 15 दिन तक। कितना दिन तक? स्नान पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक, स्नान पूर्णिमा से लेके कहाँ तक? अमावस्या तक। अमावस्या का दूसरा दिन फिर जगन्नाथ का दर्शन होगा, उसको कहते हैं नेत्र उत्सव। क्या कहते हैं? नेत्र उत्सव। जगन्नाथ का दर्शन होता है और उसी दिन गुंडीचा मार्जन होता है। और जो अणसर होता है उसी टाइम में सिर्फ लक्ष्मी जी सेवा में निवृत्त रहते हैं। कहते हैं पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लया तार संगे लीला कैल निवृत करिया। और जगन्नाथ का साथ है सिर्फ लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी उसी टाइम पे 15 दिन तक सेवा में, क्यों? क्योंकि शास्त्र में प्रमाण है जो कि सकाम कर्मी भक्त जाते हैं जगन्नाथ का सामने, तब तो उसी टाइम पे जगन्नाथ लक्ष्मी का साथ समय मिलता नहीं बात करने के लिए। कभी कभी किसके घर पे कोई ज़्यादा लोग आते हैं मेहमान, तो पत्नी से बात कर सकते हैं क्या? तो पत्नी को टाइम दे देती है। तो उसी प्रकार लक्ष्मी जी से टाइम लेती है, ये 15 दिन तक निवृत्त रहते हैं भगवान का सेवा के लिए और उसी टाइम पे अच्छे से सेवा करते हैं। ताहर समति लया भक्त सुख दिते रथ चढ़ी बाही लहैल बिहार करिते। फिर ये लक्ष्मी जी से फिर परमिशन लेंगे जगन्नाथ जी, परमिशन लेके रथ का ऊपर सवार होके फिर चलेंगे। कहाँ जाएंगे? गुंडीचा मंदिर जाएंगे। लक्ष्मी से परमिशन लेते हैं, बिना परमिशन से नहीं। और लक्ष्मी जी को बोलते नहीं कि मैं इतना दिन के लिए जाते हैं, कितना के लिए जाना है बोलते नहीं। इसीलिए कभी कभी प्रभु जी लोग के भी माताओं लोग को बताना नहीं चाहिए, भक्ति करने के लिए जाना चाहते हो कि वृंदावन आते आना चाहते हो, बताना नहीं, हम जा रहा हूँ थोड़ा आ रहा हूँ, ऐसा बोल के इतना दिन के लिए नहीं बताने का। और जगन्नाथ को कही, जगन्नाथ कभी बोले नहीं मैं इतना दिन के बाद वापस आऊँगा, कभी नहीं बोले। और रात का ऊपर सवार होके फिर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर को क्या कहते हैं? द्वारिका। और गुंडीचा मंदिर को वृंदावन। इसको कहते हैं जगन्नाथ मंदिर को नीलांचल और गुंडीचा मंदिर को सुंदरांचल। नीलांचल से सुंदरांचल जा रहा है भगवान, उत्तरामुखा होकर जा रहा है, उत्तरामुख होके गुंडीचा मंदिर को प्रस्थान करेंगे। और ये जगन्नाथ रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु हमेशा विराजमान रहते हैं, भाव व्याकुलता होके। 15 दिन तो चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन नहीं होता है, चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अलारनाथ। और अलारनाथ में शास्त्रगत प्रमाण है जीवन में एक बार अणवसर का टाइम पे कोई भी व्यक्ति जाके जगन्नाथपुरी में वो अलारनाथ का दर्शन करें, ये 15 दिन का अंदर करोड़ों जन्म का पुण्य मिल जाता है, करोड़ों पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जगन्नाथ मंदिर उसी टाइम पे ज़्यादा लोग दर्शन नहीं, ज़्यादा लोग दर्शन जाते हैं कहाँ पे? अलारनाथ में। और चैतन्य महाप्रभु भाव व्याकुलता, उनका अंदर में इतने गर्मपन आ जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे प्रणाम करते हैं वो पिघल जाता है। ऐसा भाव हमारा नहीं होगा, ऐसा भाव हमारा नहीं। भाव तो होता था, हमें भी ताली नहीं बजाते हैं भगवान के सामने, नाचते भी नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु नाचते हैं। आप देखिए, आज एक ही भक्त है जिसका तिरोभाव है, महाभागवत वक्रेश्वर पंडित। और ये चैतन्य महाप्रभु का लीला में, ब्रज लीला में स्वयं कौन थे? अनिरुद्ध थे। जो कृष्ण का चतुर्व्यूह है, चतुर्व्यूह का एक अनुरुद्ध थे ब्रज लीला में, और ये चैतन्य महाप्रभु लीला में बक्रेश्वर पंडित बन कर आए, और ये चैतन्य महाप्रभु जब भी कीर्तन करते थे वो नाचते थे, उनका एक ही सेवा है नाचना है। और कितने घंटा नाचे, एक बार कीर्तन हुआ तो 72 आवर्स, 72 घंटा डांस किए, फिर भी थके नहीं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास से प्रार्थना किए, क्या प्रार्थना किए, बोले हजार हजार गंधर्व को बुलाइए, हजार हजार गंधर्व मैं नाचते रहूंगा। और चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा में आते थे तब रथ यात्रा में हमेशा के लिए कीर्तन मग्न रहते थे। तब जगन्नाथ मंदिर से रथ निकलता है, तब सुंदरांचल जाता है, लक्ष्मी जी से परमिशन लेकर चले गए, और ये रथ यात्रा होता है आषाढ़ के महीना, और क्या है द्वितीया तिथि, ठीक है, और आज है पंचमी। जब वो 3 दिन बीत जाता है लक्ष्मी जी परेशानी होती है, लक्ष्मी जी परेशानी हो जाते हैं, कहाँ गए, अभी तक वापस नहीं आए, अभी तक वापस नहीं आए, परेशानी हो जाता है लक्ष्मी जी, पूरा घोषा हो जाता है, पूरा घोषा होता है। और वो जब जगन्नाथ रथ के ऊपर जाते हैं तब कौन साथ में लेकर जाते हैं, कहते हैं प्रीति रे बांधिची भाई भौणी दूरे रखिता र निज घरणी। इसका अर्थ क्या है, प्रीति रे बांधिची भाई भौणी, जगन्नाथ अपना प्रेम से भाई और बहन के साथ जाते हैं, और दूरे रखिता र निज घरणी, प्रभु जब सुंदरांचल जा रहे हैं तब लक्ष्मी जी को साथ नहीं लेकर जा रहा है, साथ में बलभद्र और सुभद्रा को साथ में लेकर जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं प्रीति बांधी जी भाई भौणी, भगवान भाई की और बहन के साथ इतना प्रेम है, लेकिन दूरे रखी तरह निज घरणी, अपना पत्नी को दूर रख के चले गए, साथ में नहीं लेकर। फिर कहते हैं जेष्ठे जेष्ठे जाई जेबे आषाढ़ आसे शरदा बाली मुरु की हसे। जब जेष्ठ जाके आषाढ़ की महीना आता है तब जो जगन्नाथ का रथ जाके गुंडीचा मंदिर का सामने, उसी जगह का नाम है शरदा बाली। पहले समय पे रथ 3 नहीं होता था, आप लोग को मालूम है ना, अभी आप लोग को देख रहे हैं रथ 3 है, पहले समय में रथ 6 होता था, बीच में नदी था, बीच में क्या था, नदी था, और वो नदी को पार करने के लिए 3 नौका होता था पहले समय पे। और फिर जो गुंडीचा मंदिर का सामने वो जो रेत है इसका नाम है शरदा बाली। अभी जगन्नाथ तो शरदा बाली का ऊपर जो रथ है अभी आया नहीं, अभी 2 दिन का बाद फिर रथ मुड़ेगा, रथ को मुड़ेगा, वो होगा फिर कौन सा मुख होगा, दक्षिणामुखी, फिर दक्षिण को मुख करके फिर जगन्नाथ वापस आएंगे, कहाँ पे, नीलांचल में आएंगे, जगन्नाथ मंदिर पे आएंगे। ये बहुत सिस्टमेटिकल चलता है। और वो अब जब दक्षिणा मोड़ होता है उसी टाइम पे पहले सुभद्रा रथ को मोड़ते हैं, ये जानना चाहिए, पहले सुभद्रा रथ को मोड़ेंगे, मतलब जो जगह पे है उसको चेंज करेंगे, दूसरा जगह पे रखें, इसका बाद फिर बलदेव, इसका बाद में जगन्नाथ का रथ। लेकिन जब रथ यात्रा होता है रथ यात्रा के टाइम पे पहले बलदेव का रथ चलता है, इसका बाद बीच में सुभद्रा, लास्ट में जगन्नाथ, ठीक है। चले कहते उड़िया भाषा में कहते हैं आगे चले बलभद्र मध्य चांद मुही रे कालिया आसूची गहड़ लगाई रे। जब कालिया आता है ना जगन्नाथ तो कहते हैं, क्या कहते हैं, कालिया कहते हैं, जब कालिया आता है जगन्नाथ जब आते हैं तब उस उन्हीं का साथ ज्यादा भक्त होते हैं, उन्हीं का साथ है, इसलिए तो जगन्नाथ है कि कहते हैं ना कालिया मुहरे नालिया हस भक्त मेल को डाकुची आस, इसलिए तो जगन्नाथ हाथ को पाते के भगवान स्वयं आपको स्वागत कर रहा है, भगवान बुला रहा है, इसलिए भगवान गले मिलने चाहते हैं जगन्नाथ। इसलिए जगन्नाथ कितने दयालु है, जगन्नाथ कितने दयालु है। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा कौन सा मुद्रा में खड़े है, शरणागत मुद्रा। भगवान कृष्ण बांसुरी मुद्रा में खड़े है और भगवान राम धनुष मुद्रा में खड़े है और स्वयं जगन्नाथ भक्त का गले में मिलने के लिए खड़े है, गले मिलने चाहते हैं भगवान। इसीलिए भगवान का भगवान कैसे विराजमान है, आपको बुला रहा है, आइए गले मिलिए। इतने भगवान जगन्नाथ इतने दयालु है, इसीलिए तो जगन्नाथ स्वयं रथ का ऊपर सवार होके सारा जगत को दर्शन देने के लिए आते हैं। कोई जगन्नाथ को दर्शन करने में रोक नहीं रोक जाए, प्रभु चाहते हैं सभी को दर्शन दे के उद्धार करने के लिए। इसलिए जगन्नाथ का एक नाम है पतित पावन, पतित को उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं जगन्नाथ पुरी में विराजमान। और पुरी क्यों नाम पड़ता है, पुरी जो नाम पड़ा क्यों है, पूर्ण हो जाएगा आपका यात्रा पूर्ण होगा। हमें चारों धाम करते हैं, चारों धाम बद्रीनाथ रामेश्वरम द्वारिका लास्ट में जगन्नाथपुरी, पुरी में पूर्ण होता है, इसलिए पुरी नाम पड़ा, पूर्ण होगा आपका यात्रा। इसलिए पुरी जीवन में एक बार भी जाना चाहिए और रथ यात्रा में जाएंगे तो और अच्छा है। तब फिर कहते हैं जब लक्ष्मी जी फिर घोषा हो जाती है, तब घोषा हो जाती है, इतना दिन तक वापस नहीं आए, क्या हो गया। लक्ष्मी जी घोषा होके अपना साथ साथ अपना पात्र मंत्री दास दासी को लेके निकलता है, दास दासी को लेकर निकलता है, कहाँ, सुंदरांचल वृंदावन जगन्नाथ मंदिर से निकलेंगे और ये लीला शाम को होता है। आप जाएंगे, आज का तिथि में आप रोकेंगे उधर, शाम को होता है, शाम को 4 से 5 बजे के बीच में जगन्नाथ मंदिर से जितने से वो लक्ष्मी पंडा होते हैं, जगन्नाथ का पंडा अलग होते हैं, बलदेव का पंडा अलग होता है, सुभद्रा का पंडा अलग है, सुदर्शन का पंडा अलग है, लक्ष्मी मंदिर का पंडा अलग है, बिमला मंदिर का पंडा अलग है, सब अलग अलग। ऐसा नहीं कोई ऐसा सभी का साथ मिक्स नहीं। और ये पंडे निकल कर जाएंगे और बहुत अच्छा लीला होता है, तब लक्ष्मी का साथ चलेंगे। अब जगन्नाथ मंदिर का 4 दरवाजा, सिंह दरवाजा, घोड़ा दरवाजा और हाथी का दरवाजा और शेर का दरवाजा, लेकिन जो गुंडीचा मंदिर है उसका 3 दरवाजा है, 3 दरवाजा है। 2 दरवाजा तो आप लोग को जानकारी है, एक ही दरवाजा से सिंह दरवाजा से जगन्नाथ अंदर जाते हैं, और जब उल्टा रथ होता है उसी दिन जगन्नाथ और गुंडीचा मंदिर के अंदर जो मंडप है उसका नाम है आड़प मंडप। गुंडीचा मंदिर के अंदर दर्शन करना बहुत सौभाग्य की बात है, हर व्यक्ति को दर्शन नहीं होता है गुंडीचा मंदिर के अंदर दर्शन, गुंडीचा मंदिर दर्शन भाग्य की बात होता है, जिनको दर्शन मिल जाता है उसका करोड़ जन्म का पाप तत्क्षणात नष्ट हो जाता है, ये कहते हैं। वहां पे बहुत सुंदर दर्शन होता है जगन्नाथ मंदिर के अंदर, आपको एक ही साथ में दर्शन नहीं होगा, आप एक ही तरफ होगे तो एक ही साइड दर्शन होता है, एक आंख दिखाई देगा, दूसरा साइड जाओगे तो एक ही आंख दिखाई देगा, सही। लेकिन उधर गुंडीचा मंदिर के अंदर जो मंडप है उसका नाम है आड़प मंडप, तीनों को एक ही साथ में और पूरा नजीक दर्शन होता है, पूरा नजीक पास में। और ये जो आड़प मंडप से जो बाहुड़ा यात्रा होता है, उल्टा रथ होता है, उसी दिन एक ही दूसरा दरवाजा है उसका नाम है नाकचणा दरवाजा। उड़िया भाषा में सब अलग अलग नाम है। उसी दरवाजा से फिर आड़प मंडप से रथ का ऊपर आते हैं उल्टा रथ में। तब जो लक्ष्मी क्रोधित होके यहाँ से निकल के जाती है, तब ढूंढते ढूंढते जाते हैं, बाई चांस कोई रास्ता में रोका है क्या, और कोई जगह पे मिल जाएंगे क्या, और जाते जाते गुंडीचा मंदिर का सामने पहुँच जाती है। जब गुंडीचा मंदिर के सामने पहुंचती है तो फिर क्या होता है, गुंडीचा मंदिर के अंदर लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं, क्योंकि वृंदावन है ना, लक्ष्मी जी ऐश्वर्यवानी और गुंडीचा मंदिर जो है वो माधुर्य है, और ऐश्वर्य माधुर्य में बहुत अंतर है। इसलिए वृंदावन के अंदर ब्रज में देखिए स्वयं लक्ष्मी जी भी नहीं है, लक्ष्मी जी जाके बेलवन में तपस्या कर रहा है। हजार साल बीत जाएं, एक बार लीला हुआ था, भगवान उनका सामने मिले, लक्ष्मी जी कहते हैं मेरा को कृपा करके, मैं इच्छा की रास में भाग लेना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण कहे, बोले तुम्हारा ये ऐश्वर्य जो है ना इसको छोड़ना पड़ेगा, गोपी भाव प्रकट करना पड़ेगा, किसी गोपी का अंदर आपको जन्म लेना पड़ेगी, और वो जितने सब रास क्रीड़ा करते हैं, रासलीला में भाग लेते हैं, उनका कोई संतान नहीं है, उनका कोई संतान नहीं होती है, ये सब ऐसा होगी तब फिर आप रास में भाग ले सकते हैं। उनको भी यही रास में भाग लेने के लिए बेलबन में भगवान स्वयं बोले, आप जाके वहीं पे तपस्या करो, फिर आप कौन सा समय आएगा, फिर आप किसी गोपी का गर्भ में आओगे तब जाके। बहुत सारा इस प्रकार के लीला होता है, ये चैतन्य चरितामृत में आप लोग को पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। तब फिर लक्ष्मी जी जाती है, जाके रथ का सामने पहुंच जाती है, गुंडीचा मंदिर तो अंदर प्रवेश नहीं, रथ का सामने पहुंचती है, रथ का सामने पहुंच के फिर बहुत घोषा हो जाती है। यहाँ चलते चलते तो घोषा ऐसा ही प्रकट है, आप जानते हैं जब व्यक्ति का अंदर घोषा कब आता है, जब वो चीज को प्राप्त नहीं होता है व्यक्ति को घोषा आता है। अभी तो घोषा का बारे में चल रहा है ना, भागवत में भी प्रचेता लोग घोषा हो गए, वही चल रहा है। और क्रोध कब आता है, जब कामना का पूर्ति नहीं होता है क्रोध आता है, ठीक है। इसीलिए जब कामना पूर्ति नहीं होता है क्रोध आ जाता है, और क्रोध कहाँ से प्रकट होता है, पहला क्रोध प्रकट होता है आँख से, पहला क्रोध प्रकट होगा आँख से, आँख लाल बन जाता है, क्या बन जाता है, लाल बन जाता है, और लाल बन के और इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा सिर के ऊपर चला जाएगा, सिर के ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे कम होगा, नाक फड़फड़ेगा, फिर पड़ने के बाद फिर मुख चालू होगा, भाई साहब मुख से कोई ना कुछ काम नहीं मना तब क्या चलेगा, हाथ में चलेगा, धीरे धीरे डाउन होते जाएगा, हाथ चलेगा नहीं तो पैर चलेगा। ये क्रोध आप देखा होगा, क्रोधित व्यक्ति कैसा होता है, क्रोध हो जाने के बाद घोषा जब आ जाती है, तो लक्ष्मी जी भी वही लीला कर रहा है, और यहाँ पे इतने घोषा आ चुका था और कुछ नहीं कर पाएगा, लास्ट में जगन्नाथ का जो रथ है उसका अंदर से एक लकड़ी को तोड़ देता है, रथ को एक ही तोड़ देता है, रथ को एक ही रथ भग्न कर देती है, और तोड़ के फिर कहाँ जाती है, जिसी रास्ता में आया था उसी रास्ता से वापस नहीं जाती है, ये ध्यान रखिए। भाई चंद से जगन्नाथ को मालूम पड़ गया, जगन्नाथ आके मेरा पीछे से पकड़ के फिर बंदी बना दें, तो इसलिए दूसरे रास्ता से होके जाता है, उसका नाम है हरा गौरी साई, हरा गौरी साई ऐसा करके है, वही आप जगन्नाथपुरी में आप पता लगाओगे तो मालूम पड़ जाएगा कौन सा दिशा में फिर लक्ष्मी जी जाती है। कभी कभी आप देखिए, कभी कभी मिनिस्टर लोग एक ही रास्ता से जाना आना नहीं करते हैं, एक ही रास्ता में जाएंगे उल्टा दूसरे रास्ते में आते हैं, किसी को पता नहीं चले, और यहाँ पे लक्ष्मी जी भी ऐसा है, जब वापस जाती है रथ को तोड़ने का बाद फिर अलग दिशा अलग रास्ता होकर निकलती है। तो फिर लक्ष्मी जी रथ को तोड़ के फिर चला जाती है जगन्नाथ मंदिर, फिर जगन्नाथ मंदिर पे कुछ दिन तक फिर वेट करता है। तब जब वेट करता है कितना दिन, लगभग ये जो जगन्नाथ का रथ यात्रा होता है इसको नव दिन यात्रा कहते हैं, कितना दिन, नव दिन, जाना एक दिन आना एक दिन, और सात दिन जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर पे आड़प मंडप में विराजमान होते हैं, इसलिए कहते हैं नव दिन यात्रा जगन्नाथ की रथ यात्रा को। रथ यात्रा का दूसरा नाम है घोष यात्रा, और वो नव दिन जिस दिन पूरा होता है उसी दिन आता है जगन्नाथ वापस। वापस आने के बाद है, लक्ष्मी तो गुस्सा में है, और वो वापस आने के बाद है जगन्नाथ उसी दिन मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, उसका दूसरा दिन एकादशी होता है। ये दशमी का दिन वापस आता है और एकादशी दूसरा दिन होता है। एकादशी का दिन जगन्नाथ को स्वर्ण वेश किया जाता है। कौन सा वेश? स्वर्ण वेश। जगन्नाथ बहुत अलंकार में आभूषित रहेंगे और जगन्नाथ को साल में चार बार स्वर्ण वेश होता है। ऐसा नहीं सिर्फ रथ का ऊपर, सारा जगत का लोग को दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ 32 वेश होते हैं, दिन में चार वेश होते हैं, प्रत्येक दिन चार वेश होते हैं जगन्नाथ प्रत्येक दिन, लेकिन पर्वों पर्वाणी में अलग अलग वेश होते हैं। ये स्वर्ण वेश जैसे एकादशी पड़ा उल्टा रथ का बाद उसी दिन स्वर्ण वेश होंगे, और फिर जब स्नान पूर्णिमा हुआ उसी दिन शाम को सारा जगत का लोग को गजानन वेश होके दर्शन देते हैं। बहुत सारा कृष्ण बलराम वेश होता है, रुक्मणी हरण वेश है, प्रलंबा सुर वेश, असुर के साथ वध किया, बहुत सारा वेश होता है, 32 वेश होते हैं साल में। अब पूरा कंटिन्यू जगन्नाथपुरी में एक साल रहोगे तो सारा लीला को देख सकते हैं कैसा होता है। और जगन्नाथ ज्यादा तीन यात्रा महत्वपूर्ण है। तीन यात्रा क्या है महत्वपूर्ण है? एक ही है चंदन यात्रा, जो कि जगन्नाथ का अर्चा विग्रह को बाहर आते हैं, जो कि राधा मदन मोहन को नौका विहार करने के लिए, वो होता है वैशाख महीना में, वैशाख महीना में होता है। और वो आषाढ़ के महीना में रथ यात्रा हुआ, इसलिए आषाढ़ के महीना में जगन्नाथ का एक नाम है बामन, इसलिए बामन का रूप में जगन्नाथ को रथ का ऊपर दर्शन करना है। दूसरा है और एक ही हो जगह फगुन महीना में जो फगु खेलने के लिए। ये तीन यात्रा, ये जो फगुन महीना है उसी महीना को कहते हैं गोविंद का महीना, और उसी टाइम पे गोविंद का रूप में दर्शन करना है, क्योंकि 12 जो महीना है ये भगवान का नाम से नामित है। हमें जो 12 तिलक करते हैं, 12 जो तिलक करते हैं ये भगवान का नाम का अनुसार, इसी प्रकार हमारा 12 महीना को भगवान का नाम का अनुसार नामित किया गया। मार्गशीर महीना से शुरू होता है, मार्गशीर महीना को केशव के महीना कहा जाता है। जिसी प्रकार हमें कार्तिक का महीना को दामोदर महीना कहते हैं, उसी प्रकार आप देखेंगे केशव महीना से केशव नारायण माधव गोविंद, इसी प्रकार आप लेंगे पूरा 12 महीना को आप लिखिए, एक साइड में 12 महीना लिखिए और ये साइड में हमें जो द्वादश तिलक करते लिखिए, कौन सा महीना कौन सा भगवान का स्वरूप को दर्शन, उसी महीना में भगवान वही रूप को दर्शन करना है वही भाव से। इसलिए कहते हैं रथ का ऊपर जगन्नाथ जब दर्शन देते हैं बामन का रूप में, इसलिए कहते हैं रथम तो बामनम दुष्ट पुनर्जन्म न विद्यते। जगन्नाथपुरी में जब हमें रथ का ऊपर जगन्नाथ को दर्शन करते हैं तब हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है, इसलिए सारा जगत का लोग रथ यात्रा में आते हैं। तो फिर लक्ष्मी जी फिर घोषणा होके जगन्नाथ मंदिर पे रह रहे हैं, जब वो उल्टा रथ आता है उसी दिन जगन्नाथ अंदर नहीं जाते, स्वर्ण वेश होके सारा जगत को लोग को दर्शन देते हैं। देने के बाद दूसरा दिन एक ही होता है, क्या होता है आप लोग जानते हैं क्या होता है? एक होता है अधरामृत, इसको कहते हैं अधरपणा, उड़िया भाषा में बोलते हैं अधरपणा। अधर मतलब मुख, मुख तक जगन्नाथ अपना रथ का ऊपर विराजमान है, और इतने बड़े मटका आप सोचिए कितना बड़ा मटका, इतना हाइट वाला मटका में जूस बनता है, और जूस बन के भगवान को ऑफर किया जाएगा। ऑफर करने के ये रात को होता है, भगवान को ऑफर करने के बाद फिर वो मटका तोड़ दिया जाएगा। तोड़ेंगे क्यों? क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा में हम लोग तो मानवीय लीला दर्शन करने के लिए और मानव होके गए दर्शन करने के लिए, कोई भी अतृप्त आत्मा जो भगवान जगन्नाथ लीला में दर्शन नहीं कर पाया लेकिन जगन्नाथ का महाप्रसाद पाने के लिए व्याकुलता है, और वो अधरा पना अधरा मृत को पान करता है, तो अभी उसका उद्धार हो जाता है। जगन्नाथ इतने दयालु होते हैं, बोले रथ यात्रा में भाग नहीं लिया, मेरा अधरामृत पाके वो भी पार हो जाएगा, इतने दयालु है जगन्नाथ, इसलिए अधरपणा पीते हैं। और अधरपणा का बाद क्या होता है फिर, दूसरा दिन, इसीलिए जगन्नाथ वापस यात्रा जाने के बाद आप लोग को चार दिन तक कम से कम वहां रहना है। वापस यात्रा का बाद जिस दिन वापस यात्रा हो उसी दिन जगन्नाथ नहीं जाएंगे। दूसरा दिन अधरपणा हो गया, तीसरा दिन क्या होगा, नहीं सुन्नावेश अधरपणा, तीसरा दिन क्या होगा फिर नीलाद्रि विजय होता है। सही तिथि होगा तो नीलाद्रि विजय होगा, जगन्नाथ फिर अंदर जाएंगे। सही तिथि नहीं होगा तो फिर जगन्नाथ अपना रथ का ऊपर रहेंगे। रथ का ऊपर जगन्नाथ को अर्णभोग नहीं लगता है, ध्यान रखिए, जगन्नाथ को अर्णभोग नहीं लगता है रथ का ऊपर। रथ का ऊपर सिर्फ फल फूल खाते हैं। क्या खाते हैं? फल फूल। जिस प्रकार जगन्नाथ को जब बुखार होता है उसी टाइम पे भी उनका मेडिसिन चलता है, उसी टाइम पे भी अन्न नहीं पाते हैं, अन्न प्रसाद नहीं होता है, बुखार होता है ना। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, भगवान जगन्नाथ को स्वयं साक्षात बुखार होता है। प्रैक्टिकल हुआ था एक बार, एक ही भक्त ने जाके कि मजाक में एक पंडा को बोला, बोला आप तो सेवा करते हो, जगन्नाथ कैसा स्वयं भगवान हो के उनको बुखार है। भाई हमको बुखार होता है तो हमें थर्मामीटर में माप करते हैं, भाई हमारा थर्मामीटर में माप करते तो हम देखते हैं 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, आप थोड़ा से माप करके देखाइए, बताइए जगन्नाथ कितना बुखार है, कितना फीवर है। तो मजाक में बोल दिया और पंडा ने इमीडिएटली एक थर्मामीटर लिया मजाक में, इसको दिखाने के लिए भगवान स्वयं साक्षात लीला करते हैं कि नहीं करते हैं उसको दिखाने के लिए। ये दो साल का पहले का घटना। तो पंडा लिया थर्मामीटर, थर्मामीटर लेके फिर जगन्नाथ में ऐसा तो विराजमान है यहाँ पे लगा दिया, और लगा दिया इतना फीवर है उसको ला के दिखाया, देख ले 150 का ऊपर टप गया था, 150 का ऊपर बढ़ गया था। तो देख के हैरान हो गया, और जो भक्त मजाक में बोल रहा था रोने लगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, बोला प्रभु मैंने क्यों ऐसा कह दिया। ऐसा मत सोचिए जगन्नाथ लीला नहीं करते हैं, जगन्नाथ प्रत्यक्ष लीला करते हैं जगन्नाथपुरी में। तब तो जब नीलाद्रि विजय होते हैं, नीलाद्रि विजय में क्या होता है, लक्ष्मी तो घुसा में है, तब तो बलदेव और सुभद्रा और सुदर्शन ये सब अंदर चला जाते हैं, अंदर चल जाते हैं। लक्ष्मी जी उनको साथ कुछ ये नहीं करते हैं, क्योंकि बलदेव का साथ कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा भाई है ना, हमारे उड़िया भाषा में बोलते हैं देड़ूसुर, बड़ा भाई होता है तब उनको कभी भी, छोटा भाई के जो पत्नी होती है ना वो कभी घूंघट डाल के बैठता है, वो कभी शेर नहीं दिखाएगी। हाँ उनका, हाँ बहुत सारा उड़ीसा में ये चीज होता है, लेकिन ये सब कुछ वर्णन नहीं होगा। तो फिर तो वो बलदेव और सुभद्रा सुदर्शन अंदर चला जाता है, जब जगन्नाथ आते हैं अंदर, जब जगन्नाथ अंदर आते हैं तब तो एक ही जगह है भेंट मंडप, वहीं पे खड़ा रहते हैं। वो कहाँ पे है, आप लोग जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाएंगे लेफ्ट साइड जहाँ पे काशी विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ, और आप 22 सीढ़ी को क्रॉस करके लेफ्ट को मोड़ जाना, 22 सीढ़ी को क्रॉस करके बाईं तरफ मोड़ोगे वहां पे जगन्नाथ के लिए जो खाजा बनता है ना, खाजा क्या बोलते हैं, खाजा भी लेकर आए हैं जगन्नाथ, इतने दयालु है आप लोग के लिए खाजा भी भेजा है, ये देखिए सही, ये जो खाजा है, ये खाजा जहाँ बनता है उसी जगह पे की घर है जहाँ पे भेंट मंडप भेंट है, और यहीं पे लक्ष्मी जी खड़ी होकर देखती रहती है कहाँ पे आएगा जगन्नाथ, देखते हैं इतना दिन होकर कहाँ चले गए थे, कौन ने इसको पटाया और दूसरा का साथ पट गया था, ऐसा होके इसीलिए वो लक्ष्मी जी खड़े होकर देख रहे हैं। तब जगन्नाथ जब अंदर एंट्री करते हैं तो वो दरवाजा को क्या कर देती है, बंद कर देती है, दरवाजे को बंद कर देते हैं। देखिए लक्ष्मी का कितने साहस है, क्रोध अभी तक भी शांत नहीं हुआ। जब दरवाजा तो बंद करती है, बंद करने के बाद क्या होता है, तो फिर जगन्नाथ का पंडे और लक्ष्मी जी का पंडे का अंदर थोड़ा संघर्ष चलता है, वार्तालाप चलता है, उड़िया भाषा में थोड़ा गाड़ी चलता होगा जैसा हो, आप समझिए। तब तो जब चलता है तो फिर जगन्नाथ का तरफ से कहा जाता है, क्योंकि जब पत्नी गुस्सा होते हैं उनको कुछ मीठा मीठा बात करना है, धीरे धीरे शांत बन जाना चाहिए उसी टाइम पे, और ज़्यादा क्रोधित नहीं होना चाहिए। पति को कभी भी ज़्यादा क्रोधित नहीं होना चाहिए, उनको शांत बनाना है ना, क्योंकि आप तो घूमने के लिए गए थे, तब उस टाइम पे शांत होकर बात करना है। जगन्नाथ तो इतने शांत होकर बात करते हैं, बोले देखो मैं थोड़ी दिन के लिए गया था वृंदावन, जहाँ पे मेरा जन्म स्थान है वहाँ घूमने के लिए, और मैं तो आपको बोल के गया था इतना दिन के लिए, दिन नहीं बताया था लेकिन टाइम बीत जाता है, जब भी माँ बाप के पास कोई जाता है थोड़ा टाइम लग ही जाता है, आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। तो फिर जगन्नाथ क्या करते हैं, बड़े बड़े रसगुल्ला लाते हैं, बोला देखो रसगुल्ला दिखाते हैं ये लीजिए, और जगन्नाथ स्वयं लक्ष्मी जी को रसगुल्ला खिलाते हैं, और ये लीला भी वहीं पर होता है। उसी दिन आप नीलाद्री विजय का दिन, पूरा जगन्नाथ तो पूरी शहर में कोई भी ऐसा दुकान नहीं है, ये खजा बेचना बंद हो जाएगा लेकिन रसगुल्ला मिलेगा ही मिलेगा उसी दिन, और सभी का मुख में रसगुल्ला जाता है। तब फिर लक्ष्मी जी संतुष्टि हो जाती है, होने का बाद क्या है, फिर जगन्नाथ का दरवाजा, जगन्नाथ के लिए दरवाजा खोल देती है, फिर अंदर प्रवेश करते हैं। ये जगन्नाथ इसी प्रकार लीला करते हैं। यह आप सभी को जो चैतन्य चरितामृत में पढ़ोगे, चैतन्य चरितामृत बहुत भाव प्रवणता का अनुसार, और चैतन्य महाप्रभु ये लीला को देखने के लिए काशी मिश्र से बताए थे, बोले मैं ये लीला देखना चाहता हूँ कैसा होता है। बहुत आप लोग चैतन्य चरितामृत को पढ़िए, अब देखोगे इस चीज़ में बहुत सारा चीज़ अच्छा से लिखा गया है। और आज जो कि और हमारा शिल प्रभुपाद का जो शिष्य है अहिंद्रा प्रभु है, उनका भी आज क्या है, डिसअपीयरेंस तिरोभाव आज है। आप लोग 10 बजे आके यहाँ पे सुन सकते हैं उनका गुणगान क्या है ना प्रभु जी। यहाँ पे जो हरिनाम कीर्तन, आप जानते हैं हरिनाम कीर्तन जो होता है हमारे, ये जो 24 घंटा होता है, प्रभु जी ने इसको स्टार्टिंग किए थे, और प्रभुपाद ने उनको कहते तुम यहाँ पे हरिनाम कराओ, तब प्रभु जी का कृपा से ये हरिनाम 24 घंटा चल रहा है, और 24 घंटा हमेशा क्या होगा, चलते रहेगा। सारा जगत का लोग जब आते हैं ना वृंदावन मंदिर पे, वृंदावन मंदिर पे उनको मंदिर के अंदर प्रवेश करने का बाद यही हरिनाम उनको सुनाई देता है, जब वो सुनते हैं ऑटोमेटिकली बैठ जाते हैं और हिलते नहीं, और हिलते नहीं। जब मंदिर भी बंद हो जाए, मंदिर जब बंद हो जाता है, आरती हो गया बंद हो गया, तब भी लोग निकलते नहीं, तब क्या करना पड़ता है, हमारा जो सिक्योरिटी लोग सिट्टी मार के उनको भगाते हैं, लेकिन फिर वो जाना नहीं चाहते, और ये नाम उनको अट्रैक्शन करता है, क्योंकि वो नाम अट्रैक्शन, भगवान का नाम में ही नामी विराजमान। जब बाहर का लोग आते हैं, हमारा सभी का कर्तव्य है उनको सभी को हमें हरिनाम सिखाना चाहिए। जब वो ये हरिनाम करेंगे ऑटोमेटिकली उनका अंदर कलमश ऑटोमेटिकली दूर होता है। कल रात को आपको एक अच्छा घटना बता रहा हूँ, कल ये कि रात को लगभग 9 से 10 बज के बीच में एक फ़ोन आया बिहार से। कहाँ से फ़ोन आया? बिहार से। बिहार से फ़ोन आया, बोला प्रभु जी मैंने आपका वीडियो का लेक्चर सुना, और नंबर आपको वृंदावन से मिला था, वृंदावन में मिला था, जो आप लोग को प्रभुपाद समाधि का ऊपर हरिनाम कर रहे थे, वहाँ पे हमारा बिहार का एक प्रभु जी है मधुश्रेष्ठ प्रभु, और उन्हें कार्ड दिया था, वो कार्ड में आपका भी नंबर था, और मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। ये जो हरिनाम है, और ये हरिनाम जब भी करता हूँ ना, और इतने भाव आ जाता है, और मैं सहन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरा गाँव का लोग देख के मजाक उड़ाते हैं, बोलते ये पागल हो गया। मतलब आप उनको बोल दीजिए मैं तो पागल हूँ, लेकिन मेरे से बढ़कर आप लोग भी पागल है, लेकिन आप वो पागल होंगे तो उधार नहीं पाओगे, लेकिन मेरा जैसा पागल हो जाएगा तो आपका उधार हो जाएगा, आप उनको इतना ही बताओ। इसलिए और उन्होंने बात करने के लिए बहुत समय बता रहा था, बोला और थोड़ा बात करूँ क्या, मैं बोला मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं कल बात करूँगा। तो इसी प्रकार भगवान का नाम का शक्ति कितना है, इसलिए सभी का कर्तव्य है, सभी को हमको हरिनाम सिखाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।